صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى آله. حضرات گرامی، آج اگر اس دنیا پر اور اس کے حالات پر ایک نظر ڈالیں تو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا اقتصاد کا، سماجیات ہوں یا اخلاقیات، ہر جگہ بحران ہی بحران نظر آ رہا ہے. ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، سیاسی بحران، اخلاقی بحران، اقتصادی بحران، سماجی بحران، خاص طور سے اخلاقی بحران. بحرانوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا انسان یہ جو ہے نظر آ رہا ہے، اور دن بدن اس میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے، غرق ہوتا ہی جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے اس دلدل میں. کچھ کو احساس نہیں ہے اور کچھ کو احساس ہو چکا ہے. نکلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، بہت ہاتھ پیر مارا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس دلدل سے باہر نکل آئیں، لیکن جتنی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی اور دھستے جا رہے ہیں، اتنے ہی اور دھستے جا رہے ہیں. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. وجہ یہ ہے کہ جب انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس وقت تک نکلنا ممکن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کوئی دوسرا جو ہے مضبوط ہاتھ اسے کھینچے نہ وہاں سے. ایک مضبوط رسی پھینکی جائے اور ایک مضبوط ہاتھ اسے کھینچ لے. وہ خود سے اگر نکلنے کی کوشش کرے، اتنا ہاتھ پیر مارے گا اتنا اور ڈوبتا جائے گا، اور دھستا جائے گا، اور دھستا جائے گا. ضرورت ہے ایک مضبوط اور توانا ہاتھ کی، ضرورت ہے ایک مضبوط رسی کی. جب تک اس مضبوط ہاتھ کا سہارا نہ لیں گے، جب تک اس مضبوط رسی کا سہارا نہ لیں گے، تب تک اس دلدل سے نکلنا ناممکن ہے. وہ مضبوط ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور وہ رسی قرآن اور اہل بیت ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اگر دلدل سے باہر نکلنا ہے، اگر یہ جو ہے نجات چاہتے ہو ان تمام بحرانوں سے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق سماجیات سے ہو، یا اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، ان تمام بحرانوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور رسی کیا ہے؟ اس رسی کے دو ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تب تک تم گمراہ، کوئی بھی بحران تمہیں چھو نہیں سکتا ہے، نہ تم کسی بحران کو یہ جو ہے جنم دو گے اور نہ کوئی بحران تم پر اثر انداز ہو سکتا ہے جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے. بلا وجہ نہیں ہے کہ امام خمینی نے اپنا وہ مشہور یہ جو ہے وصیت نامہ لکھا تھا، تو وصیت نامے کی ابتدا اسی حدیث سے کی تھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے. اور اس پر امام خمینی اپنے وصیت نامے میں جو ہے فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تمسک جو ہے قرآن سے بھی ہے، ہمارا تمسک جو ہے وہ اہل بیت سے بھی، اور اسی تمسک کا نتیجہ تھا کہ وصیت نامے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، روح بھی میری خوش ہے، دل بھی میرا جو ہے یہ مطمئن ہے. کیوں؟ قرآن سے بھی تمسک ہے، اہل بیت سے بھی تمسک ہے، جن کی بنا پر نہ ہمارے یہاں اخلاقی بحران پایا جاتا ہے، نہ ہمارے یہاں سیاسی بحران پایا جاتا ہے، نہ ہمارے یہاں اطمینان ہی اطمینان ہے. تو قرآن مجید اور اہل بیت یہ دو ذریعہ ہیں جو ہمیں بحرانوں سے نجات دے سکتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، اہل بیت کیا کہتے ہیں، کس طرح سے ان بحرانوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ سورہ فرقان میں خداوند عالم نے وہ نسخہ لکھا ہے، وہ نسخہ پیش کیا ہے جس پر عمل کر کے ہم ہر طرح کے بحران سے نجات پا سکتے ہیں. سورہ فرقان کی یہ جو ہے 77 آیتیں کل ہیں سورہ فرقان میں، کل 77 آیتیں ہیں، اور تقریباً پورا سورہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں یہ جو ہے نبوت سے آشنا کرتا، ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ان لوگوں کے صفات بیان کرتا ہے جو نہ بحرانوں کو جو ہے جنم دیتے ہیں اور نہ بحرانوں میں پھنستے ہیں. ان صفات کو اگر ہم حاصل کر لیں، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہر طرح کے بحران سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی. سورہ فرقان وہ سورہ ہے جس کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأها فی کل لیلہ لم یدخلہ النار ولم یحاصبہ وکان منزلہ فی الفردوس الاعلی. جو انسان ہر رات اس سورے کو پڑھ لے، سورے فرقان کو، عرض کیا کہ بہت لمبا سورہ نہیں ہے، کل یہ جو ہے 77 آیتیں ہیں، جو شخص ہر شب سورہ فرقان کی تلاوت کرے اس کا اثر یہ ہوگا، نمبر ایک، خدا اس پر قیامت کے دن عذاب نہیں کرے گا. وَلَمْ يُحَاسِبْ ہو، خدا قیامت میں اس کا حساب نہیں لے گا. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا حساب بہت ہی سنگین، تو حساب دینا ہی معاملہ راستہ مشکل ہوتا ہے، اگر ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر بھی حساب دینا پڑ جائے تو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن قیامت کا حساب جو ہے وہ تو بڑا سخت حساب ہے نا. وہاں جب حساب لیا جائے گا، اس طرح سے حساب لیا، زمین جل رہی ہوگی، سوا نہرے پہ سورج ہے، بتائیے والا سورج نہیں ہے، یہ سورج ختم ہو چکا ہوگا قیامت کے دن. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، قیامت کے دن یہ سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، یہ سورج نہیں ہے، اسپیشل سورج ہے، کھوپڑی کھول رہی ہوگی، پیر جل رہے ہوں گے، کیونکہ زمین جل رہی ہے نا، زمین تپ رہی ہے، اس وقت قیامت کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب. قیامت کے حساب کہ کیفیت سمجھانے کے لیے، آخر کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بعض زبان سے کہہ دی جاتی ہے تو زیادہ سمجھ میں نہیں، عملی نمونہ اگر پیش کر دیا جائے نا تو بات ज्यादा समझ में आती। बहुत सारी तारीखें बयान की जाती थी, लोगों के जहन में नहीं उतरती थी। अब ईरान वालों ने मुख्तलिफ तारीखी वाकयात की जो है फिल्म बना दी है, वो फौरन जहन में बात क्या है बैठ, जो जो बात स्टेज पर आ जाए वो चीज जल्दी समझ में आती है। पैगंबर ने भी कयामत के हिसाब को समझाने के लिए कुछ ऐसे ही किया, अपने दो अजीम सहाबियों को बुलाया, एक का नाम सलमान एक का नाम अबू ज़र, आप जानते ही हैं, एक दसवें दर्जे ईमान पर फायद है, एक ईमान के नवे दर्जे पर फायद है। अपने इन दोनों सहाबियों को बुलाया, बुलाने के बाद दो दिरहम सलमान को दिया, दो दिरहम अबू ज़र को दिया कि जाओ खाओ पियो खर्च करो। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इससे हलाल पैसा तो कोई हो नहीं सकता। जो पैसा पैगंबर दे रहे हैं, भाई हम तो अब एक दूसरे के बारे में तो शक कर सकते, मतलब शक करने की जरूरत नहीं है, मगर शक तो हो सकता है ना। अब हमारे घर में आए, हमने खाना आपके आगे रखा, पता नहीं मौलाना का पैसा हलाल है कि हराम, नहीं मालूम ये हलाल पैसा है कि हराम पैसा है, दोनों तरह का हो सकता है ना। मजलिस पढ़ने हम यहां पर आए, हमने मजमा देख करके मजलिस पढ़ दिया, अगर देखा मजमा ये जो है नमाजियों का है तो नमाज की फजीलत में पढ़ दिया, अगर देखा बेनमाजियों का है वैसे ही पढ़ दिया। साहब अब नमाज से पढ़ने क्या जरूरत है, हमारा बस आपका अकीदा ठीक होना चाहिए, बकिया अमल मौका महल देख करके ना मजलिस में हमने पढ़ दिया। अगर हमने इस तरह की मजलिस पढ़ा, इसके बदले में जो पैसा मिला, ये जो गुमराह किया है ना, मिसगाइड किया है, तो गुमराह करना मिसगाइड करना क्या है, हराम है या हलाल है, वो हराम है। उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो भी, अगर नहीं मिंबर पे आया और आने के बाद मजमे की परवाह न किया बल्कि खुदा की मर्जी को देखते रहे वो क्या चाहता है। मतलब आप हमारे घर में आने के बाद तो शक कर सकते हैं कि ये वाली है कि वो वाली है, खुदा की ये जो है मर्जी के लिए है या बंदों की खुशनुदी के लिए है, क्योंकि इसका मियार इमाम ज़ैनुल अब्दीन अलैहिस्सलाम ने यजीद के दरबार में बयान कर दिया था, यजीद के दरबार में, कि जो तकरीर बंदों की खुशनुदी के लिए की जाए उसका अंजाम क्या होता है, और जो तकरीर खुदा की खुशनुदी के लिए किया जाए उसका अंजाम क्या होता है। जिस वक्त अहले बैत ये जो है रसन बस्ता खड़े हुए हैं, इमाम को कैद करके ये जो है मस्जिद में लाया जाता है, जुमे का दिन है, खतीब मिंबर पर जाता है, जाने के बाद बनी उमैया के फजाइल बयान करता है, अहले बैत के खिलाफ जो कुछ कह सकता है उसने कहा। जब खुतबा दे के उतरा तक दफा इमाम खड़े हो गए, अय्युहल खातिब इश्तरैता सखतल खालिक बे रजल मखलूक, ए मुकर्रर, ए खतीब, तूने बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया, बंदे को खुश करने के तूने अल्लाह को नाराज कर दिया, फल तबव्वा मक़अदका मिनन्नार, अब तू अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। तो हर वो तकरीर जहां पर बंदों की खुशी का ख्याल रखा जाए और खुदा की ये जो है रजा का ख्याल न रखा जाए, इमाम की निगाह में वो क्या है, फल तबव्वा मक़अदका मिनन्नार, अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ। उसके बाद इमाम कहते हैं, या यजीद इज़न ली हत्ता असअदा अला हाज़िहिल अअवाद व अतकल्लमा बिकलिमातिन, ए यजीद अब मुझे भी इजाजत हो, मैं जाकर के तकरीर करूं, अब मैं वो तकरीर करूंगा जिससे अल्लाह खुश होगा और सुनने वालों को अजर व सवाब मिलेगा। तो मिंबर से हर तकरीर जो है वो काबिल एहतराम नहीं है। अगर वो तकरीर हो रही है जिससे खुदा राजी, बंदे राजी हो या ना हो, और अगर वो तकरीर है जिससे बंदे तो खुश हो गए, खूब नारे लग गए, लेकिन खुदा नाराजी अगर खुदा ना खास्ता हो गया, तो बहरहाल पैगंबर ने जो पैसा दिया है उस पैसे के हलाल होने में तो कोई शको शुभा नहीं है। हमारे पैसे में तो आप शक कर सकते हैं, अबू ज़र दो दिरहम लो जाओ खर्च करो, सलमान दो दिरहम लो जाओ खर्च करो, इजाजत है खर्च करने की, रखने को नहीं दिया कि अमानत के तौर पर रखे रहो बाद में तुमसे लेंगे, जाओ खर्च करो, दोनों ने खर्च कर दिया, अबू ज़र ने अपने लिहाज से खर्च किया, सलमान ने अपने तौर पर खर्च कर दिया। जब पैसे खर्च हो गए तो रसूल खुदा ने फिर बुलाया, कहा आओ हिसाब दो कहां खर्च किया, बताओ तुमने पैसे को कहां खर्च किया। और हिसाब लेने के लिए पहले एक बड़ा सा पत्थर मंगाया, पत्थर को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, यानी कयामत की जमीन तैयार कर दी, कयामत की जमीन तैयार कर दिए। पत्थर अच्छी तरह से गर्म हो गया, धूप तो पड़ ही रही थी। काबूदर खड़े हो जाओ पत्थर पे, बताओ कि पैसा कहां खर्च किया, दो दिरहम। अब बेचारे अबूदर खड़े हुए, एक पैर रखते हैं, एक पैर उठाते हैं, एक पैर रखते हैं, एक पैर दो ही दिरहम है, ज्यादा नहीं है। या रसूलुल्लाह आपने दो दिरहम दिया, उससे मैंने रोटी खरीदा, गोश्त खरीदा, अंगूर खरीदा, ये खरीदा, जो भी खरीदा था, बहरहाल हलाल ही में खर्च किया, तो हराम में तो खर्च नहीं किया था ना, पैसा भी हलाल, जहां खर्च किया है वो भी हलाल, मगर हिसाब तो देना है ना। जनाब उम्मे कुलसूम से क्या कहा था मौला अली ने, जब आखिरी इफ्तार जो किया है मौला ने उम्मे कुलसूम के घर किया है ना, बेटी के घर बाप आया है, और बेटियां तो चाहती हैं क्या लाके रख, खैर वहां का तो रिवाज नहीं था। जनाब उम्मे कुलसूम ने रोटी लाके रख दिए, नमक और दूध, इतना ही, तो बहुत रंगीन दस्तरखान नहीं है। एक दफा मौला उम्मे कुलसूम को देखते हैं, बेटा क्या चाहती हो, तुम्हारा बाबा कयामत में देर तक हिसाब देता रहे। बेटा मैं तुम्हारे नाना से सुना है, फी हलाल हा हिसाब, फी हराम हा इकाब, अगर दस्तरखान हराम गजाओं से सजा हुआ है तो अजाब है, लेकिन अगर हलाल गजाओं से भी सजा है, हिसाब तो देना ही देना है, और हिसाब किस आलम में देना है, हिसाब इस आलम में देना है कि जलती हुई जमीन होगी, खोपड़ियां खोल रही होंगी। अबू ज़र खड़े हो जाओ, खड़े हुए अबू ज़र, या रसूलुल्लाह दो दिरहम आपने दिया, मैंने गोश्त लिया, रोटी लिया, अंगूर लिया, खुरमा लिया, खजूर लिया, जो भी लिया था गिना रहे हैं, और जब तक फहरिस्त खत्म ना हो जाए तो पत्थरी पर रहेंगे ना। साहब उनकी लिस्ट खत्म हो गई, नीचे आए, आ गए नीचे, सलमान अब तुम आ जाओ। सलमान आए, या रसूलुल्लाह दो दिरहम आपने हमें दिया, हमने फकीर को दिया, खुदा हाफिज। दो दिरहम आपने हमें दिया, हमने फकीर को दे दिया। उतर आए नीचे, जिसका जितना लंबा खर्च है हिसाब, वो भी हिसाब किस तरह से, अर्थ किया कि वो ये जो है ड्राइंग रूम में एयर कंडीशन कमरे में सोफे पर बैठ के हिसाब नहीं देना, अगर से वो भी सख्त होता है, ऐसे हिसाब देना है। इमाम फरमाते मन कराहा फी कुल लैलह, जो शख्स हर शब इस सूरे की तिलावत कर ले, लम युअज़्ज़िब हो अल्लाह उस पर अजाब नाजिल ना करेगा, वलम युहासिब हो और कयामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। बिला हिसाब जन्नत में है बहुत सारे अफराद ना जिनका हिसाब नहीं होगा, शोहदा का हिसाब नहीं होगा। पूछा किसी ने मासूम से कि उनका हिसाब क्यों नहीं होगा, क्या वो अपना हिसाब दे चुके हैं, तलवारों के साय में हिसाब दे चुके हैं अपना वो। तो कुछ लोग हैं जिनका हिसाब नहीं होगा, साबरीन का हिसाब नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि जो सूरह फुरकान की तलावत करेगा हर शब, उसका हिसाब नहीं है, लम जो हासिब हो। वकाना मंजिल हू फिल फिरदौस फिल आला, जन्नत का एक बहुत बड़ा दर्जा है जिसे कहते हैं फिरदौस से आला, अल्लाह उसका ठिकाना फिरदौस से आला में करार देगा, जो सूरह फुरकान की तिलावत कर ले। अलबत्ता आप जानते हैं कि अब अइमा तिलावत की बात करते हैं तो तिलावत से क्या मुराद है, तिलावत वो नहीं जो हम लोग करते हैं, शुरू किया और खत्म किया, शुरू किया और खत्म किया, नहीं, तिलावत से मुराद यहां पर है तिलावत, तदब्बुर और अमल। अगर तिलावत है मगर तदब्बुर नहीं है, तदब्बुर है मगर अमल नहीं है, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनु, कितने ही ऐसे कुरान के पढ़ने वाले हैं जिनके ऊपर कुरान लानत भेजता है। उसे पढ़ लेने से कुछ नहीं है कि जी बस आज से शुरू करते हैं, सूरह फुरकान पढ़ते रहेंगे, बकिया जो कुछ जिंदगी में करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, उसके बाद तो जन्नत वाजिब जहन्नम हराम। اور حساب بھی نہیں ہوگا, جنت بھی فوراً بغیر رکے بغیر حساب دیے ہوئے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. نہیں, مراد یہ نہیں ہے. سورہ فرقان کو پڑھے, سورہ فرقان کو پڑھنے کے بعد سمجھے, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے. تو کہا سورہ فرقان میں کچھ ایسی چیز ہے, میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ سورہ فرقان کیا چیز ہے. تو بہرحال دنیا میں ہر طرف یہ جو ہے بحران ہی بحران ہے. اس بحران سے اگر بچنا چاہتے ہیں, اقتصادی بحران, سیاسی بحران, سماجی بحران, معاشی بحران, اخلاقی بحران, اس دلدل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ سورہ فرقان بیان کر رہا ہے. 77 آیتیں کل اس کے ایک حصے میں, باقی تین حصہ تو عقائد سے تعلق ہے, ایک حصہ جس کا تعلق ہے اس کو میں آپ کے عرض کروں گا. قرآن کہتا ہے اگر تم بحران سے بچنا چاہتے ہو تو واحد راستہ یہ کہ عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جاؤ. عباد الرحمن کی صف, رحمان کے بندے بن جاؤ. عباد الرحمن کی صف میں شامل ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی قسم کے بحران میں تم کبھی جو ہے یہ گرفتار ہی نہ ہوگے. جنگیں ہوں گی, سنکشن لگیں گے, پابندیاں ہوں گی, دشمنیاں ہوں گی, لیکن انسان کا دل مطمئن رہے گا. دنیا سے گیا جو کہتا ہوا چلا گیا کہ میں تو اطمینان قلب کے ساتھ جا رہا ہوں, بادلی آرام و قلبی مطمئن. کیوں؟ یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی جو ہے مشکل, مشکل ہونا اور ہے اور مشکل کو محسوس کرنا اور ہے, دو الگ چیزیں ہوتی ہیں نا. یعنی مشکلات سے تکلیف کا پہنچنا اور ہے اور مشکلات میں گھرنا اور ہے. امام حسین کربلا میں یہ جو ہے مشکلات میں گھرے ہوئے تھے, مگر مشکلات سے امام حسین ٹوٹے نہیں تھے. مشکلوں میں ٹوٹ جانا اور ہوتا ہے نا. مشکلوں میں گھرے تھے امام حسین, لیکن جیسے جیسے مشکل بڑھتی جاتی تھی امام حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا. مصیبت جب پڑتی ہے تو بعد لوگ چیخنے لگتے ہیں, بعد چیختے نہیں ہیں, مطلب چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے کہ یہ ہے مصیبت زدہ. چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے نا, یہ جو ہے مرجھا جاتا ہے چہرہ. دور سے دیکھنے والا پوچھے بھائی خیریت تو ہے, کیا بات ہے, آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے نا. امام حسین مصیبت کو برداشت ہی نہیں کر رہے تھے, مصیبت کو مصیبت ہی نہیں سمجھ رہے تھے. کمال تو یہ ہے, اس لیے چہرہ کھلتا جاتا تھا, کھلتا جاتا تھا, کھلتا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی حسین عباد الرحمان میں شامل ہی نہیں تھے, سردار تھے عباد الرحمان کے. عباد الرحمان کے سردار تھے امام حسین. یہ ہے کیا عباد الرحمان؟ قرآن میں عباد الرحمان کا لفظ دو جگہ آیا ہے. ایک تو یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی, وعباد الرحمان یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سورہ فرقان کی آیت. اور ایک جگہ اور ہے, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. کفار کے بارے میں, قریش کے بارے میں ہے کہ یہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں, جو عباد الرحمان ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے عباد الرحمان میں شامل ہیں. یہ کفار قریش فرشتے جو عباد الرحمان میں شامل ہیں ان کو یہ جو ہے مؤنث بتاتے ہیں, اپنے لیے جو ہے لڑکے پسند کرتے ہیں, اللہ کے لیے لڑکی پسند کرتے ہیں. بہرحال تو فرشتوں کو اللہ نے کہا ہے عباد الرحمان. یعنی عباد الرحمان میں جو افراد شامل ہو جاتے ہیں وہ کم سے کم فرشتوں کے ہم پلہ ہوتے ہیں, کم سے کم وہ اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے ہم رتبہ, وہ جانور جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو قرآن میں کئی طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہے نا. کچھ انسان وہ ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں, کچھ انسان وہ ہیں جو فرشتوں کے ہم رتبہ ہیں, کچھ انسان وہ ہیں جو جانور جیسے ہیں, کچھ انسان وہ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں. عام طور سے ہم ہر کوئی کہتا ہے انسان یعنی اشرف المخلوقات, یہ کہتے ہیں نا. انسان یعنی نہیں, ایسا ہے نہیں بھائی. اللہ نے اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے کے بھیجا ہے, بنا کے نہیں بھیجا ہے. بنا کے نہیں بھیجا ہے آپ کو اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے کر کے بن سکتے ہیں, आप में टैलेंट पाया जाता है, इस्तेदाद है, सलाहियत है कि आप अशरफुल मखलूकात बन। टैलेंट के होने का मतलब यह नहीं कि आप हो गए। एक बच्चे में डॉक्टर बनने का टैलेंट है, इंजीनियर बनने का टैलेंट है, फकीह बनने का टैलेंट है, शायर बनने का टैलेंट है। इसका मतलब थोड़ी वो शायर हो गया, वो डॉक्टर हो गया, ऐसा तो नहीं ना होता। टैलेंट के साथ साथ कोचिंग की जरूरत होती है, तरबियत की जरूरत होती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो बच्चा जिसमें टैलेंट था वो डॉक्टर बना। वरना कितनी ही ये जो है सलाहियतें और टैलेंट वो होते हैं जो जिंदा जिंदा दफन हो जाते हैं। वह इजल मऊद तो सुएलत, कयामत के दिन खुदा सवाल भी करेगा जो हमने सलाहियतें दी थी उसे दफन क्यों कर दिया, उसे परवान क्यों नहीं चढ़ाया। तो अल्लाह ने हमें इंसान की शक्ल देकर के भेजा है, न फरिश्तों से अफजल बनाया है, न फरिश्ता जैसा बनाया है, न जानवर जैसा बनाया है, न जानवर से बदतर। चार किस्म के इंसान हैं, फरिश्तों से अफजल यानी फरिश्तों से अफजल बनने की तुम में सलाहियत है, गुंजाइश है। जानवर जैसे उलाइका कल अनाम, वो तो जानवर जैसे हैं, जानवर से बदतर, बल हुम अव्वल। ये चारों चीजें हमारे अपने इख्तियार में हैं। तो इबादुर रहमान के सफ में जो शामिल होते हैं, कम से कम उनकी जो है क्वालिटी ये है कि वो फरिश्तों जैसे हो, कम से कम फरिश्तों के हम पल्ला हो। इबादुर रहमान का लफ्जी तर्जुमा करने को, रहमान के बंदे, रहमान के अब्द। ये अब्द होता क्या है, किसको अब्द कहा जाता है? हम सब कहते हैं हम तो अल्लाह के बंदे हैं, वाकई अल्लाह के बंदे हैं, हमें अब्द खुदा। अब्द की तारीफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। देखिए वो तारीफ हम पे सादिक आती है तो हम बंदे हैं, वरना तो अब्द नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि अब्द कौन होता है? अल्लाह यरल अब्दो फीमा खव्वलहुल्लाहु लहू मुल्का। अब्द वो है कि अल्लाह ने जो नेमतें उसे दी हैं उन नेमतों का अपने को मालिक न समझे। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं ना, दौलत आ गई किसी के पास, ओहदा किसी के पास, इल्म किसी के पास, मनसब किसी के पास है ना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं ना, घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। अगर अल्लाह का बंदा समझना चाहते कि यह अल्लाह का बंदा है या नहीं, अलबत्ता हम दूसरे को ना समझें, खुद अपने को परखें। मैं अक्सर बात करता हूं, जो सिफात बयान करते हैं उसे सुन करके दूसरों को परखने की कोशिश ना करें, खुद को परखें कि हम हैं कि नहीं है। ये नहीं कि फौरन नहीं आप अल्लाह के बंदे नहीं हैं। क्यों? मौलाना ने कल बताया था, हदीस पढ़ी थी ना, वो आप पर फिट नहीं आती। नहीं नहीं, दूसरों पर नहीं। ये थर्मामीटर वो है जो अपने मुंह में लगाइए, दूसरे के मुंह में मत लगाइए। बार लोग दूसरों का बुखार देखने के लिए परेशान रहते हैं, कितना टेम्परेचर है, अपना देखो क्या है, छोड़ो दूसरे को। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसके आप हिदायत ना करें, हिदायत तो करें, उसमें कीड़े ना निकालें, बताएं तो। और ये जो है बताने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसको पहले गलत समझें और गलत साबित करें तब उसे बताएं। असल इस्लाम में इसको अच्छा नहीं माना गया है। नसीहत का ये तरीका इस्लाम के अंदर ये जो है ममदूह नहीं है, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है, नसीहत की इस तरीके को। नसीहत अगर करना है तो वही है जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बच्चे हैं, कम से नहीं। अभी एक शख्स को देखा कि ये जो है वजू कर रहा है गलत, बूढ़ा आदमी है गलत वजू कर रहा है। एक तरीका तो कहने के अरे बड़े मियां, कब्र में पैर लटके हुए हैं आपके और आपको ये जो है वजू करना भी नहीं आता, शर्म की बात है। एक तरीका तो कहने का ये था। जो तरीका इन दोनों शहजादों ने अपनाया वो क्या है? करीब गए, सलाम अलैकुम, चचा हम दोनों ये जो है वजू करते हैं, आप देखिए हम में से किसका वजू सही है। और दोनों ने वजू किया, दोनों का वजू तो एक ही जैसा था। उसको एहसास हुआ इनका वजू तो एक जैसा है, हमारा अलग है, हमने जो किया है वो इससे मुख्तलिफ है। कहने बच्चों तुम्हारा वजू सही है, मेरा ही वजू गलत था। सलवार भेजना है तो मिलजुल के भेजिए ना। जो हम जो इस्लाम की तहजीब है, जो इस्लाम की तहजीब है, जिस वक्त फिरौन की हिदायत के लिए खुदा ने भेजा है हजरत मूसा और हजरत हारून को, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन। कौन फिरौन? छोटी मोटी गलती करने वाला नहीं है, तगा सरकश हो गया है, अपने को खुदा के मुकाबले में तो खुदा से भी बड़ा, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा तुम्हारा पालने वाला, सबसे बड़ा मालिक तुम्हारा मैं हूं। रब यानी मालिक, यानी पालने वाला, पर खालिक नहीं। फिरौन ने खालिकियत का दावा नहीं किया था, जानता था खालिकियत का दावा करेंगे तो कोई मानेगा नहीं। खालिक कौन मानेगा? तो खुद ही देख रहा है कि इसको खुद किसी ने जो है पैदा किया है, ये कोई नहीं मानेगा। दावा क्या कर, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा बॉस हूं। ये तो दावे आज भी होते हैं ना, आज भी दावा, सबसे बड़ा बॉस मैं हूं। सारा झगड़ा का है कि इसी का तो है, सारे बोहरान क्यों दुनिया में आए हैं? सबसे बड़ा बॉस मैं हूं। अना रब्बुकुमुल आला, वो फिरौन जो दावा कर रहा है सबसे बड़ा बॉस मैं हूं। मूसा जाओ नसीहत करो, किस तरह से नसीहत करो? फिरौन मुर्दाबाद, फूला लहू कौलन लयना, नरम गुफ्तगू करना। फिरौन से बदतर तो हमारे यहां कोई नहीं है ना। अगर नसीहत करना है किसी को, घर में, खानदान में, फैमिली में, बाहर दोस्तों में, अहबाब में, तो फिरौन से बदतर तो कोई नहीं है ना। कूला लहू कौलन लयना, अलबत्ता ये कौलन लयन कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जनाब मूसा को भी इसका एहसास हो गया था, ज्यादा कहते खुदाया तबलीग करने बाद में जाऊंगा, पहले बड़ा सा कलेजा हमें दे दे। रब्बिश्राहली सदरी है ना कुरान में, रब्बिश्राहली, क्योंकि गौर किया इसके ऊपर, उसी के बाद है ये। जब खुदा ने कहा लयना, कूला लहू कौलन लयना, अरे फिरौन को देखते हैं गुस्सा खा, खून खोलने लगता है कमबख्त को देख करके, उससे नरम गुफ्तगू में कैसे बात कर सकते हैं? इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, खुदाया उतना बड़ा कलेजा दे दे हमें। रब्बिश्राहली सदरी, और जब शरह सदर हो जाएगा, दिल बड़ा हो जाएगा, वसअत पैदा हो जाएगी, यस तो यस्सिर ली अमरी, तो काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अखे आप गुस्से में अगर कोई बात करें तो गुस्से में पता नहीं आपके मुंह से क्या क्या निकल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने को काबू करके गुफ्तगू करेंगे ना, तो नपे तुले जुमले आप बयान करेंगे, नपे तुले जुमले आपके काम को आसान कर देंगे। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जब गुस्से पर काबू पा लेंगे तो जबान भी खूब चलेगी। मैंने गुस्से में इंसान होता है, कहना कुछ चाहता है, मुंह से कुछ निकलता है, यफ़क़हु क़ौली, तो सारे लोग मेरी बातों को समझने लगेंगे। अब पूरा सिलसिला अगर मिलाएं आयतों का, एक दूसरे सिलसिले को मिलाएं, तो अंदाजा खुद ब खुद हो जाता है। कूला लहू कौलन लयना, अबद और अब्द कौन है? अब्द वो है कि अल्ला यरल अब्द फीमा खव्वलहुल्लाहु इलैह मुल्का, अपने को आजमाए कि हम बंदे खुदा हैं या नहीं। जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं उसका मालिक खुद को ना समझे। क्यों ना समझे मालिक? घर हमारा, हम मालिक नहीं है, गाड़ी हमारी, हमने खरीदी है भाई, मेहनत हमने की है, इल्म हमारा है, खिताबत हमारी है, कुव्वत गोयाई हमारी है, सब कुछ हमारा, क्यों ना कहें हमारा? अगर अब्द हो तो नहीं कहो। क्यों? फाइनल अब्दा ला यकून लहू मुल्क, अब्दियत का माना ही यही होता है कि गुलाम का अपना कुछ थोड़ी होता, सब कुछ आका का होता है ना। गुलाम का अपना क्या होता है? मशहूर किस्सा है, शायद मैं यहां अर्ज भी कर चुका हूं, कि एक शख्स था, ये उस जमाने की बात है जब ये जो है गुलामी का सिस्टम था, आका और गुलामी का सिस्टम पाया जाता था। हमेशा आका गमगीन गमजदा बैठा रहता था, मखमूम। गुलाम ने एक दिन पूछ ही लिया कि आका आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? कहने लगा, जाओ जाओ अपना काम करो, तुम्हारे समझ में बात आने वाली नहीं, तुम गुलाम क्या जानो। अरे
शायद किसी काम आ जाऊं, बयान करने में क्या जाता है, कुछ आपका दर्द हल्का ही हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। चलो उसने भी सोचा ठीक है बयान करने में क्या चाहता है। तो मुश्किल हमारी यह है कि मैं 1,00,000 दीनार का मकरूज हूं, लोन हमारे ऊपर बहुत बड़ा है और अदा करने की कोई सबील नहीं है। जिनका कर्ज लिया है कर्ज खा मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खत्म बोला ये कौन सी बात है, बड़ा आसान काम यह तो है। हम 2 मिनट में हक वो क्या, तो हमें ले आके बाजार में बेच दीजिए, आपको गुलाम तो हूं ना, एक प्रॉपर्टी एसेट तो आपके पास है ही, आप जाके बेच दीजिए बाजार में और बेच करके कर्ज अदा कर दीजिए। हंसा मालिक, तू रह गया गुलाम का गुलाम। अरे भाई तेरी कीमत मार्केट में 10,000 से ज्यादा नहीं है, मेरा कर्जा 1,00,000 का है। गुलाम भी हाथ से जाएगा और कर्जे का कर्जा बाकी रह जाएगा। कहा तो उसमें क्या जाता, अब हमें 1,00,000 में बेच दीजिए। पागल कहीं, 10,000 का गुलाम 1,00,000 में कौन खरीदेगा। आप लेके मार्केट में जाइए तो हमें, अगर कोई पूछ ले आपसे कि तुम्हारे गुलाम की खसूसियत क्या है जिसकी बना पर तुम 10,000 का गुलाम 1,00,000 मांग रहे हो, तो आप जवाब में कह दीजिए कि मेरे गुलाम को आदाब बंदगी आता है, मेरे गुलाम को आदाब बंदगी आता है। ठीक है, ये जो है मरता क्या ना करता, लेके आ गया बाजार में, खड़ा हो गया जहां बाजार थी ना, बाकायदा उस जमाने में ये जो है बाजार लगता था गुलामों का, जहां मंडी थी वहां खड़ा हो गया, गुलाम बेच रहा हूं 1,00,000 1,00,000 1,00,000, जो आता है हंसकर चला जाता है, कोई इशारा करता है लगता है कुछ चूल्हे ढीली हो गई है उसकी, 10,000 का गुलाम 1,00,000 में बेच रहा है, कौन खरीदेगा। सुबह से शाम हो गई, एक आदमी आकर रुक गया, यार मैं सुबह से तुमको देख रहा हूं कि तुम 1,00,000 1,00,000 1,00,000 कहे जा रहे हो, तुम देखने से पागल होकर भी नहीं लगते हो, चक्कर क्या है, 1,00,000 तक कम भी नहीं हो रहे हो तुम, क्या खसूसियत है तुम्हारे गुलाम में, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं तुम्हारे गुलाम में जिसकी बिना पर तुम 1,00,000 मांग रहे हो। उसने वो जुमला दोहरा दिया, मेरे गुलाम को आदाब बंदगी आता है। अच्छा ये बात अगर है तो मैं खरीदने को तैयार हूं, लेकिन पैसा कल दूंगा, आज आजमाऊंगा पहले। तो कोई बात नहीं, ले जाओ। गुलाम को लेके गया, घर जाते ही उसने डंडा उठाया, गुलाम की पिटाई शुरू कर दी, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 10 20 100 मारते 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 हांफने लगा, थक गया मारने वाला गुलाम, चुपचाप मार खा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। आखिर में उस आका ने उसके हांफते हांफते कहा, कमबख्त में इतनी देर से तुझे मार रहा हूं, तू तो पूछ भी नहीं रहा मुझे क्यों मार रहे हो। अरे अभी अभी तो मैं तुम्हारे घर में आया हूं, कोई नाफरमानी किया हो तो मारो, कोई हुक्म तुमने दिया हो हुक्म को अंजाम न दिया हो या किसी काम को खराब किया हो तो मारो, आखिर मार क्यों रहे हो, पूछा क्यों नहीं। जवाब देता आखिर मैं बंदा जो ठहरा, मैं अब्द हूं, अब्द को पूछने का हक ही नहीं होता, क्यों कर रहे हो, क्यों तो वो करता है जिसकी अपनी कोई जो है प्रॉपर्टी हो मिल्कियत हो, मैं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं ना। कहने लगा कि वाकई तुम्हें आदाब बंदगी आती है, यह वाकई अब्द नहीं था न ये वाकई आका है, दुनिया में बंदगी तो सिर्फ अल्लाह की है ना, कोई किसी का मालिक नहीं है। यह है इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम, अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, या बुनैया ला तजअल नफ्सका अब्दन लिगैरिक फकद जअलक अल्लाह हुर्रा। ए मेरे लाल, अपने को किसी का गुलाम मत बनाना, अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है, बास फकत एक है और कोई बास नहीं है। अफसोस यह है उस बास को हम सब भूले हुए हैं, दुनिया के बास क्या हमारा चूचरा नहीं होता है, जिसे कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर सैलरी अच्छी मिल रही है वो जो कह दे यस बॉस, कभी पूछते हैं क्यों, कभी पूछते हैं क्यों, जो बास हैं नहीं और बास बन बैठे हैं उनके तो हम हर हुक्म को बजा लाने को तैयार हो जाते हैं, मगर जो असली बॉस है वहां पे हजार सवाल, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों करें, वो क्यों करें, वो क्यों करें।
तमाम फरमाते हैं कि अब्द वो है कि अल्लाह यरल अब्द, पहचान अब्द की क्या है, अल्लाह यरल अब्द फी मा खव्वलहुल्लाहु इलैहि मुल्का, जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं उसे मालिक न समझे। क्यों मालिक न समझे, इसलिए कि गुलाम की मिल्कियत होती नहीं है। यरौन अल माल माल अल्लाह, जो इबादुर रहमान होते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जितना भी माल उनके पास आ जाए उस सबको अल्लाह का माल समझते हैं, अपना माल नहीं समझते हैं। وَيَجْعَلُونَهُ حَيْثَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, उस पैसे को उस माल को वहीं सर्व करते हैं जहां सर्व करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। मालिक नहीं ना है, हम तो अमानतदार हैं। अमानतदार क्या करता है, मालिक जहां कहे दे दो। अगर मालिक कहता है खुम्स दे दो तो देते हुए हाथ कांपेगा, अरे बाप रे बाप, $10 अगर बचा होता तो $2 खुम्स निकाल सकते थे। यार $1 मिलियन की सेविंग हुई है, उसमें से 2 लाख दे दे, ये नहीं सोच रहे हैं कि 8 लाख फिर भी बच रहा है, 2 लाख दे दे। ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम माल को अपना माल समझने लगते हैं। मैंने कमाया, मैंने कमाया, क्यों दे दें, तुमने कमाया, कैसे कमाया जी, अपने कुव्वते बाजू का है, ये हलाल पैसा कुव्वते बाजू से कमाए, ये कुव्वते बाजू किसकी है, ये कुव्वते बाजू कहां से आई, ये हाथ कहां से आया, ये पैर कहां से आया, ये जबान कहां से आई, ये अकल जिस पर नाज करते, जरा सा एक चूल अगर हिल जाए मिंबर से उठार करके पागलखाने में फेंकेंगे, यही तो होगा ना, और कुछ होगा। ये जबान जो चल रही है वो कहां से आई है, तुम्हारी है ना जबान तुम्हारी, ना आंखें तुम्हारी, ना हाथ तुम्हारे, ना आंकड़े तुम्हारी, कुछ तो तुम्हारा नहीं है। जिस जमीन पे तुम मेहनत कर रहे हो, हल चला रहे हो, वो जमीन भी अल्लाह की है। जिस पानी से फसल को सींचते हो वो भी अल्लाह का है, जिस रोशनी से फसल को ताकत देते हो वो भी अल्लाह की है। तुम्हारा है क्या यहां पर, अगर कोई साहब किसी को अपनी टैक्सी दे दे चलाने के लिए गाड़ी, ड्राइवर जो दिन भर कमाता है, टैक्सी का ड्राइवर सब रख लेता है अपनी जेब में, $500 की आज इनकम हुई है, नहीं साहब उसमें 100-200 जो भी हो वो टैक्सी के जो मालिक, क्यों उसे क्यों दे भाई, मेहनत तो हमने किया है, उसने किया है मेहनत, मेहनत तो हमने किया है, मेहनत हमारी उसे क्यों दें। कहते नहीं भाई वो उसके बगैर तो हम 500 कमा नहीं सकते थे ना, उसकी टैक्सी का शेयर तो देना पड़ेगा। तो टैक्सी वाले को टैक्सी का शेयर तो देने को तैयार है, जो सब कुछ अल्लाह को, अल्लाह का शेयर नहीं दोगे। खुदा कहता हम मोहताज नहीं, हम गनी हैं, अगर देना ही चाहते हो, हमारे कुछ गरीब बंदे हैं, मोहताज बंदे हैं, कमजोर बंदे हैं, उन्हें दे दो। अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए कि अलमालो मालुल्लाह, अगर अपने को हम खुदा का बंदा समझ लें, कितने बोहरानों से नजात मिले, सारा बोहरान क्यों है दुनिया में, बोहरान से बचना है ना, उस दलदल से बाहर निकलना है, दलदल से बाहर कैसे निकलोगे। पहली शर्त यह है कि इबादुर रहमान के सफ में आ जाओ, इबादुर रहमान इन रहमान का अब्द, अब्द कौन है, पहले अब्द तो बनो। अब्द वो है जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं उसे अपना, अपने को उसका मालिक न समझे, क्योंकि बंदे की कोई मिल्कियत आका के मुकाबले में हो, जितना आका दे दे, जितनी आका ने परमिशन दे दी, तुमने $1000 कमाया है ठीक है, 80% तुम्हारा, 20% हमारे गरीब बंदों का, अलबत्ता ये जो है सेविंग में, किसी दिन इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, अभी तो वक्त नहीं रह गया, कि इस्लाम में माली जिहाद की 4 स्टेज है, हम लोग तो पहली स्टेज पर फंसे हुए हैं अभी। पहली स्टेज है खुम्स व ज़कात, दूसरी स्टेज है इन्फाक, उससे ऊंची है, तीसरी स्टेज ये जो है मुवासात, चौथी स्टेज है ईसार। हमने तो अभी अलिफ ही नहीं कहा है कि बे और जीम कहें,
अलिफ ही हमने अभी नहीं कहा, और शायद अलिफ इसलिए नहीं कहते कि मेरा कहना पड़े। एक साहब ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब को लाके बिठा दिया। मौलवी साहब पढ़ाने लगे, बेटा कहो अलिफ, बच्चा चुप। कहा बेटा कहो अलिफ, बच्चा चुप। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, दस दफा, झल्ला गया आखिर में। मौलवी साहब झल्ला गए, कंपक इतनी देर से एक अलिफ कहने में क्या जाता, कह दे अलिफ। कहा मौलवी साहब अगर अलिफ कहने के बाद मामला खत्म हो जाता तो मैं कह देता, मैं अलिफ कहूंगा तो आप कहेंगे कहो बे, मैं कहूंगा बे आप कहेंगे कहो जीम, तो हम अलिफ ही नहीं कहते कि बे की बारी आए, अलिफ ही नहीं कहते हम तो, अलिफी पे फंसे हुए हैं ना हम, खुमसो जकाती से आगे नहीं बढ़ रहे, हजार व इतराज क्यों ऐसा दें, क्यों करें, काहिलों को हम क्यों दे दें, ये क्यों नहीं खुद मेहनत करते, क्यों नहीं कमाते, हमारा पैसा इनके में कहां क्यों लगे, हर सब लोग खुद ही खर्च, अरे मुसीबत। वरना अगर वो निजाम चल जाता तो कल जो इतनी देर तक, अब बता वाकई काबिले ये जो है मुबारकबाद है यहां के लोग कि उन्होंने उस गोल को पूरा किया, गोल ही पूरा नहीं किया उसे आगे भी पूरा कर दिया, वाकई काबिले मुबारकबाद है हिम्मत की। वरना मैं मजमे को देख के सोचा था 10-20 हजार रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं खुद इदारा चला रहा हूं ना, मुझे मालूम है कैसे होता है क्या होता है। वाकई में उस मजमे को देख के, चूंकि जितना मजमा यहां बैठा है इतना मजमा भी कल रात में नहीं था, इतना मजमा भी नहीं था, मगर माशाल्लाह इस छोटे से मजमे में 6-7 लाख डॉलर का इकट्ठा हो जाना थोड़ी देर में, हिम्मत की लोगों ने। लेकिन अगर वाकई वो जो सिस्टम इस्लाम ने बनाया है उस पर अगर अमल होता, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इजाफी पैसा हमेशा मौजूद रहेगा, हमेशा इजाफी पैसा मौजूद रहेगा। बहरहाल जिस चीज को अल्लाह ने हमें अता किया, बंदगी की पहली शान यह है कि उसको मालिक न समझे। वो यह जलू हैसुमा अमर अल्लाह तआला बिहिम, उसको वही खर्च करेंगे जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक एक पैसा गए मार्केट में सामान खरीदने के लिए, ये खरीदने की अल्लाह ने इजाजत दी है कि नहीं दी है? हम रोटी लेना, हाँ इजाजत है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो बदन, ये बदन तो अल्लाह की अमानत है ना, इसको भी तो बाकी रखना है, डैमेज तो नहीं करना है बदन को। ये कपड़ा, हाँ हाँ अल्लाह ने कहा है कि हमारे बदन को ढाक के रखना, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, घर, ये गाड़ी, ये फना फना जितनी चीजें, कुछ चीजें वो हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। खूब अल्लाह ने इसराफ से मना किया है, मेरा पैसा है मैं जहां चाहूं, हाँ फिर मेरा पैसा, अब तो अब्द है ना, अब्द है, बंदे हैं। बंदा वो है जो अब माल को अपना माल समझे ही नहीं, जहां उसने इजाजत दी है, इसराफ फौरन बच जाएगा। खुदा की कसम अगर आज इसराफ पर कंट्रोल पा लिया जाए तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। जितनी आबादी बढ़ जाए, मौजूदा आबादी की चौगुना आबादी भी अगर हो जाए तो इस अल्लाह की जो है कायनात में खाने की कमी नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बंदा पैदा हो जाए और जमीन पर उसके लिए रिस्क ना हो? ये हो ही नहीं सकता भाई। हम आप भी अगर किसी को दावत देते हैं, अगर 100 आदमी को आप दावत देते हैं तो खाना कितने लोगों का जो है पकाते हैं, 80 का या 120 का? हम जैसे आजिज, नातमा, बखील, हम जैसे आजिज, नातमा, बखील भी अगर पकाते हैं, मेहमान अगर 100 को बुलाया है तो 120 का इंतजाम करते हैं ना, 80 का? ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने भेज दिया यहां पर और खाने का इंतजाम ही नहीं? नहीं है, हमारे हिस्से का कोई और ले उड़ा है। अगर इसराफ से इंसान बच जाए, ये जालूनहू हैसो अमरहुमुल्लाह तआला बिह, जहां अल्लाह ने इजाजत दी है वहीं, वला युदब्बिरुल अब्दु लिनफ्सिही तदबीरा, बंदे की शान यह है कि बंदा उसूल खुद से नहीं मुअय्यन करता है, अपने खुदा से पूछता है हमें कैसे चलना है, किस राह पे चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कपड़ा किस तरह का पहनना है, शक्ल किस तरह की बनानी है, जितनी भी चीजें हैं कानून अपनी जिंदगी में खुद नहीं बनाता, बल्कि खुदा से पूछता है कि खुदा तू बता कि तेरा कानून क्या है। पार्लियामेंट में बैठ करके कानून नहीं बनाएगा, कुरान को खोल करके पूछेगा, पता तेरे हदीसों को देखेगा कि हमें क्या करना है। अगर बंदा बंदा है तो कानून बनाने की जुरअत नहीं करेगा। कानून सिर्फ खुदा का कानून। व जुमलतो इस्तेमाल ही फीमा अमरहुल्लाह तआला व नहाहु अन, उसकी पूरी जिंदगी जो सर्फ होती है, अपनी जिंदगी का कोई काम करता ही नहीं है जब तक ये नहीं देख लेता है कि अल्लाह ने क्या कहा है। पूरी जिंदगी को सर्फ कर देता है अल्लाह के अहकाम की इताअत में और जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है उससे दूर रहने में। जो काम भी करना चाहता है, घर से बाहर निकलना, निकलने की इजाजत अल्लाह ने दी कि नहीं दी है, इधर जाए कि उधर जाए, सिनेमा में जाए या मस्जिद में जाए, वो अल्लाह ने कहां जाने के लिए कहा है पहले यह देखता है। जिधर अल्लाह ने जाने को कहा है, क्योंकि तो अब्द है ना, बंदा है, आका की मंशा के बगैर, आका की मर्जी के बगैर कोई काम अंजाम दे ही नहीं सकता है। जब इस हद को इंसान पहुंच जाता है इसे कहते हैं आब्द, और जब आब्द बन जाता है तो फिर बुहरान खत्म हो जाता है, फिर बन जाता है नफ्से मुतमइन्ना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي। वो वक्त आखिर आवाज आई थी ना, सब शहीद हो चुके थे, अब्बास के शाने कट चुके थे, अली अकबर के सीने पर बर्छी लग चुकी थी, अली असगर का गला छिद चुका था, यह कौ तन्हा है हुसैन, जख्मों से चूर है हुसैन, 1900 हैं जख्म तने चाक चाक पर। उस वक्त आवाज आती है फतखली फी अबादी, तुम इस काबिल हो जिसे हम अपना बंदा कह सकते हैं। हुसैन ने अपना कुछ नहीं समझा ना, कुछ नहीं समझा, इसीलिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिर बात लोग कहते हैं नहीं, करबला की दास्तान झूठी है, हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर ले, मुमकिन ही नहीं है, नहीं हो सकता। भतीजा, भतीजे की लाश घोड़े की टापों से पामाल हो गए मगर नहीं टूटा, भांजे अजीज भांजे शहीद हो गए फिर भी नहीं झुका, बराबर के भाई के शाने कलम हो गए फिर भी हिम्मत ना हारा, जवान बेटा जिससे जबरदस्त मोहब्बत है हुसैन को, दोहरी मोहब्बत है, नाना का शबीह भी है और जवान बेटा भी है, वो एड़ियां रगड़ रहा है मगर उसके पैर से बात में कोई लफ्जिश नहीं आ रही, भला हो सकता है? उसके हाथों में उसका 6 महीने का बच्चा जो है दम तोड़ दे उसके बाद भी न झुके। ये इतराज करने वाले जानते ही नहीं कि हुसैन अब्द है, हुसैन अब्द होने के बिना पर अली अकबर भी है तो खुदा की अमानत है, असगर है तो खुदा की अमानत है, अब्बास है तो खुदा की अमानत, खुदा की अमानत खुदा को वापस करते हुए इस तरह आप कहे का परेशानी कहे का। यही वजह है कि हुसैन हर चीज आसानी से कुर्बान कर रहे दे रहे हैं, यहां तक कि वो चीज हुसैन ने कुर्बान कर दी जिसके बारे में इमाम जमाना कहते अब की का बदल दुमू दमा। अय अब अब्दुल्लाह हुसैन, हम आपके गम में करबला की दास्तान में खून के आंसू रोएंगे। ये मामूली आंसू नहीं, पानी वाला आंसू नहीं, खून के आंसू रोएंगे। एक आरिफ की मुलाकात इमाम से हो गई, इमाम से पूछा क्या मौला ये जो आपके जियारत में जुमला है वाकई आपने कहा है? अब की का बदलत दुमू दमा, मैं आंसू के बजाय खून रोऊंगा। कहा मौला वो कौन सी मुसीबत है जिसके ऊपर आपने ये बात कह दी कि अब की बदलत दुमू दमा? क्या ये वो मुसीबत है जब अब्बास के शाने कलम हुए थे? बहुत बड़ी मुसीबत थी ना। इमाम हुसैन ने कहा था ना अल आन इनका सारा जहरी, मेरी कमर टूट गई। इमाम फरमाते नहीं नहीं, वो मुसीबत नहीं है, ये तो वो मुसीबत है कि अगर अब्बास जिंदा होते तो वो भी खून के आंसू रोते। का मौला तो क्या फिर वो मुसीबत है जब अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी थी? हुसैन ने कहा था बुनैया अल दुनिया बादक अल अफा, मेरे लाल तुम्हारे बाद तो दुनिया मेरी निगाहों में तारीख हो गई है, अंधेरी हो गई है। कहा नहीं, वो मुसीबत भी नहीं है, अगर अली अकबर जिंदा होते तो वो भी इस मुसीबत पर खून के आंसू बहाते। कहा मौला, क्या फिर वो मुसीबत है मौला हुसैन की, जब उनके हाथों पे 6 महीने का बच्चा था, हुसैन कभी खैमे की तरफ आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, जबान पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का वो मौका भी निकाय मौला, वो मौका था जब हुसैन के से खुश गले पर शिमर का खंजर चल रहा था, वो मौका भी नहीं है। अरे ये वो मुसीबत है, अगर हुसैन होते तो वो भी खून के आंसू रोते। मौला आखिर वो कौन सी मुसीबत है? एक दफा इमाम का, अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब का असीर हो करके कूफा शाम के बाजार में फिराया जाना है। अजरकुम अल्लाह, ये अजीम मुसीबत है कि जब कभी इमाम सज्जाद से पूछा गया मौला आप पर सबसे बड़ी मुसीबत कहां पड़ी, मौला ने कभी यह ना कहा कि सबसे बड़ी मुसीबत थी जब मेरे भैया कासिम का लाशा बहमाल हुआ, कभी यह ना कहा सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जब मेरे बाबा का जो है मेरे बाबा के सूखे गले पे खंजर चला। हमेशा इमाम कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम, सबसे बड़ी मुसीबत यह थी जब मेरी मां बहने और फुफिया बरहना सर शाम के बाजारों में फिराई जा रही थी। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारे अल्लाह वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले सदक़े में अहले बैत अतहार के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम खुदा के बंदे बन जाए। बारे अल्लाह तो हमें अब्दियत के दर्जे पर फायज होने की तौफीक इनायत फरमा। बाबू तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बीमार हैं उन सबको शफाए कामिला हिनायत फरमा। बारे लाहा जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। बारे लाहा जो परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। बारे लाहा जो बेरोजगार हैं उन सबको हलाल और पाकीजा रोजगार इनायत फरमा। माबूद जो साहिब रोजगार है उन्हें अपने बेरोजगार भाइयों की खबरगिरी की तौफीक करामत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। बारे लाहा जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक करामत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शियान अहले बैत जहां कहीं भी हैं उनकी हिफाजत फरमा। बारे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जिस भेस में जिस जगह भी हैं, अगर लायक हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा, वइल्ला उन्हें नीस तो नाबूद फरमा। बारे लाहा मराजे मुअज्जम और रहबरे मुअज्जम की हिफाजत फरमा। बाबू तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। जब इमाम का जहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके असहाब व अंसार में शुमार हो सकें। اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره ما تم حسين Ya Hussein, 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 Ya Hussein.